ये जो ज्योतिषी भी हैं, जो गणना करते हैं, खगोल शास्त्री हैं, ज्योतिष देखते हैं, चाहे हाथ के द्वारा देखें, चाहे वे कुंडली के द्वारा देखें कि हमारी जन्म कुंडली बना करके देखें, तो ये जो हैं ज्योतिषी हैं, आखिर ये भी क्या बताते हैं? केवल एक चौखट ही तो बताते हैं, बता देंगे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, पर ये भी कहते हैं कि इन घटनाओं में परिवर्तन भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? उसके लिए गुंजाइश बनी हुई है। ज्योतिष शास्त्र में ये जो घटनाएं घटने वाली हैं, उनके भी परिवर्तन की संभावनाएं रखी। क्यों? मनुष्य यदि कर्म करे तो, अब भले ही उसका रूप इस प्रकार से, अगर वह पूजा पाठ करे, यह करे, वह करे, वह तो भिन्न भिन्न प्रकार की बात है, पर पूजा पाठ के पीछे में उसकी भाव की तीव्रता ही अधिक है। कि आज पूजा पाठ का मतलब हमने समझ लिया कि हमने पुरोहित को बुला लिया, उसे पैसा दे दिया, कहा हमारा जितना खर्चा आए बता दो, ये पूजा पाठ हमारे लिए कर दो, यह विकृत रूप है। इससे तो पूजा का फल हमें नहीं मिलेगा, वह तो जो कर रहा है उसको मिलेगा। पूजा पाठ के मतलब है कि उसके पीछे हमारी भावना की कितनी तीव्रता है। तो भावना की जैसी तीव्रता होगी, उसके फल का अंकन होगा, वह संस्कार जाकर के चिपकेगा हमारे कारण शरीर में, और उसका फल हमें जीवन में बराबर उपलब्ध होगा। इसलिए हमने कहा, क्या कहा, कि यह जो प्रारब्ध है और यह जो जिसको हमने पुरुषार्थ कहा, इन दोनों में कोई टक्कर नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। और ऐसा नहीं मानना चाहिए कि प्रारब्ध के द्वारा हमारा यह जो जीवन है बिल्कुल नियंत्रित है। नहीं, कुछ हद तक नियंत्रित है, सीमित है, पर उसके भीतर में कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। और यदि हम उस प्रकार का कर्म करते हैं, इच्छा स्वातंत्र लेकर के अपने पुरुषार्थ को व्यक्त करते हैं, तो हम प्रारब्ध को बदल दे भी दे सकते हैं। यह भी मान्यता स्वीकार की गई है। शास्त्रों ने कहा है, यदि मनुष्य का पुरुषार्थ इतना तगड़ा हो जाए, उसकी भावना इतनी तीव्र हो जाए, तो आखिर यह जो प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध में भी परिवर्तन होता है। श्री रामकृष्ण से पूछा भक्तों ने कि महाराज, क्या प्रारब्ध का फल भी कट जाता है? वे कहते हैं, हाँ रे, अगर भावना की तीव्रता हुई, प्रारब्ध में भी परिवर्तन होता है। अगर प्रारब्ध में ऐसा लिखा था कि उसका पैर कटेगा, तो अगर उसमें भावना की तीव्रता हुई तो पैर नहीं कटेगा, पर हाँ, कांटा उसमें चुप करके रह जाएगा। इसका मतलब कि फल में अंतर तो हो ही गया। उसका पैर कटने वाला था, पर उसने ऐसा पुरुषार्थ किया, भावना की ऐसी तीव्रता अपने जीवन में संपादित की कि पैर में कांटा चुभ करके रहेगा, पैर कटने से बच जाएगा। तो यह भी मानो ये जो आप तो पुरुषों की वाणियां हैं, तो इन दोनों के संदर्भ में। और तीसरा जो था, तीसरा प्रश्न था, वह एक टेक्निकल प्रश्न था कि ठीक है, यह जो होता है, जैसे हम कुछ देखते हैं, एक इसमें भी देखते हैं, जैसे कुछ प्रकार की योनियां हैं, वनस्पति योनियां हैं, हमने कहा तो वनस्पति योनियों को जैसे एक टहनी को काट करके गड़ा दें, तो वहां पर मानो टहनी लहलहा उठती है, पौधा लहलहा उठता है। तो अब यह तो हम समझ सकते हैं, एक बीज को जहां पर बपित किया, उससे एक वृक्ष निकला, तो ठीक है, एक बीज से एक वृक्ष निकला। अब यह जो एक वृक्ष है, उसके भीतर में कोई एक जीव आकर के समाया है, यह बात तो ठीक, पर एक यह जो पौधा लहलहा रहा है, से एक टहनी काटी, जिसको हम बेशरम का पौधा कहते हैं, जो बहुतायत से मिलता है, एक टहनी काटी, उसको हमने गड़ा दी, उसको गड़ा दिया तो उसमें से भी फूल फूटने लगते हैं, तो क्या इतने के भीतर में सब जीव आ गए? यह प्रश्न उठता है। और एक दूसरे प्रकार का जीव होता है, जैसे जेलीफिश अंग्रेजी में है, या एक प्रकार का कीड़ा होता है, तो आपने यह पढ़ा होगा कि वह कीड़ा है, आपने उसको दो में काट दिया, उसके दोनों भाग जीवित रहते हैं, आपने दोनों भागों को फिर दो दो में काट दिया, चार टुकड़े हो गए। अब चारों के चारों ये भाग जीवित हैं, तो अब इसको हम एक जीव माने या इनको चार जीव माने, किस प्रकार से माने? यह एक प्रश्न हमारे सामने आया था, जिसको पिछली बार रखा था, यह तीसरा और अंतिम प्रश्न। तो उसका उत्तर दो प्रकार से दिया जा सकता है, दो प्रकार से यह है। पहला प्रकार तो यह है कि यह जो अमीबा से लेकर के, जैसे हमने कहा योनियों का जो हिसाब किया, तो जिसे हम कहेंगे कि बायोलॉजी साइंस, तो बायोलॉजी साइंस में भी वनस्पति को दूर कर दिया गया है। जैसे इसको समझने के लिए यो माने कि हमने चार प्रकार के जीव माने हैं, एक तो उद्भिज, दूसरा स्वेदज, तीसरा अंडज और चौथा जरायुज। ये चार प्रकार के जीव हम लोग स्वीकार करते हैं। उद्भिज का मतलब जो जल से निकलता, जो स्वेदज का मतलब जो जल से पैदा होता है, स्वेद कहते हैं जलकण को, पसीने को, तो जो जल से पैदा होता है, जैसे केंचुआ है, केंचुआ जल से पैदा होता है, मिट्टी में रहता है, पर गर्मी होती है तो गर्मी से पैदा होता है, उसको हम स्वेदज कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जब गर्मी आने लगती है, विचित्र सी गर्मी, तो उस समय ये कीड़े बहुत आते हैं, ये सब स्वेदज हैं, मानो ये जल निर्मित हैं, वाष्प से निर्मित हो जाते हैं, जो आते हैं फतिंगे के रूप में आते हैं, कितने आते हैं और आकर के खत्म हो जाते हैं, उसी समय जन्म लेते हैं और उसमें जन्म लेकर के खत्म हो जाते हैं, इनको कहा गया स्वेदज। ये स्वेद से उत्पन्न होते हैं। दूसरी श्रेणी है जो उद्भिज हैं, मानो जो पृथ्वी से निकलते हैं, तो पृथ्वी से निकलने वाले वनस्पति हैं, पेड़ हैं, जो पृथ्वी के पृथ्वी से निकलते हैं, इनको कहा उद्भिज। तीसरी जो श्रेणी है जीव की, उसको कहा गया है अंडज, जो अंडे से निकलते हैं, और चौथी जरायु, जो गर्भ से निकलते हैं। तो आपने अंडे से भी देखा, आप केंचुआ देखेंगे तो यह तो पृथ्वी से निकलता है, पौधे देखेंगे केंचुआ, जैसे मैंने कहा केंचुआ जो निकलता है जल से निकलता है, पौधे निकलते हैं पृथ्वी से निकलते हैं। अब छोटे छोटे कीड़े भी आप देखेंगे, जैसे यह नन्हा सा चींटा है, चींटियां कितनी दिखाई देती है, चींटियां कैसे पैदा होती, अंडे से पैदा होती है। आपने चींटियों का अंडा देखा होगा, ये जो चींटियां हैं ये अंडे से पैदा होती हैं, तो अंडे से तो कितने पैदा होते हैं, और फिर जरायु जो गर्भ से पैदा होते हैं। अब ऐसा माना गया है कि यह जो जिसको हमने विकास का शास्त्र कहा कि 128 लाख योनियां बायोलॉजी की दृष्टि से, या 84 लाख योनियां हमारी अपनी भाषा में, तो ये जो योनियां हैं उसमें उन दोनों को नहीं गिना गया जिसको कहेंगे आप उद्भिज और स्वेदज, इन दोनों को नहीं गिना गया, और गिना गया किसको, अंडज और जरायुज को। यहां पर यह नियम लागू होता है। एक तो यह उत्तर है कि अंडज पर और उसी प्रकार जरायुज पर यह जो नियम है यह लागू होता है, इसका मतलब कि ये जो 128 लाख योनियां बायोलॉजी में गिनी गई तो ये 128 लाख योनियां केवल अंडज और जरायुज की हैं, वहां पर उद्भिज और स्वेदज वे उनको नहीं मानते, वहां पर वो प्लांट लाइफ कह देते हैं, वेजिटेशन कह देते हैं, वेजिटेटिव लाइफ कह देते हैं, वहां पर उसको नहीं मानते जिसको हम कहेंगे स्पीशीज या योनियां। यह बायोलॉजी शास्त्र की दृष्टि से उत्तर है। और हमारे यहां भी दो प्रकार के मत हैं, कुछ ने तो यह माना है कि वनस्पति शास्त्र में भी जीव आता है, और यह कहा गया है कि वनस्पति शास्त्र में यह जीव चला जाता है, एक हमारी यह मान्यता है। दूसरी यह मान्यता है कि वनस्पति शास्त्र में जीव नहीं जाता, अगर वह जाता ये जो 84 लाख योनियां कही गई हैं, तो ये जो 84 लाख योनियां हैं वह अंडजों और जरायुजों की हैं। तो अगर हम इसको 84 लाख योनियां इन्हीं दो की माने, तब तो समस्या का उत्तर बहुत आसान है, तब तो बिल्कुल ठीक है कि ठीक है वह जो विकास का क्रम चल रहा है, वह जो मनोयंत्र आता है, जिसको हमने कहा अमीबा के भीतर में जो मनोयंत्र है जो विकसित हो रहा है इवोल्यूशन की प्रक्रिया से, तो ठीक है वह अंडज, अंडज से फिर जाकर के जरायुज, तो इस प्रकार से यह परिवर्तन का क्रम चलता है, उसमें वह दिक्कत पैदा नहीं होती जिस दिक्कत का उल्लेख हमने किया। एक वनस्पति को हमने काटा और वनस्पति को काट करके लगा दिया और कई वनस्पतियां निकल गई, वह दिक्कत नहीं आती या नहीं आती, तो एक तो वह हो गया। अच्छा, दूसरी बात जैसे हमने कहा कि वह जो जैसे केंचुआ टाइप का कि काट दिया, तो वह केंचुओं को भी हमने स्वेदज के अंतर्गत रखा है, इसलिए यह जो स्वेदज हैं यह भी इसमें नहीं आते, इस श्रेणी में नहीं आते। फिर वहां क्या, तो प्रश्न उठता है, ठीक है आपने यह कहा कि अंडज और जरायुज इन पर यह जो विकास का क्रम है लागू होता है, विकास का सिद्धांत लागू होता है, और विकास का सिद्धांत वनस्पति पर, स्वेदज पर और उद्भिज पर लागू नहीं होता, पर वहां भी तो चैतन्य दिखता है, वहां पर भी तो हमें प्राणवत्ता दिखाई देती है। पहले की जो बायोलॉजी जीवशास्त्र, उसने तो उनमें चैतन्य स्वीकार नहीं किया, ये तो पहले हमारे जीव शास्त्री थे सर बोस, जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस ने पहली बार यह प्रमाणित किया कि इनके भीतर भी प्राण है। जैसे हम अन्य पशुओं को प्राणी कहते हैं, उसी प्रकार ये वनस्पति भी प्राणी है, ऐसा प्रयोग करके दिखाया सर जगदीश चंद्र बोस ने पहली बार। और तब से कुछ जो वनस्पति शास्त्री हैं वनस्पति के भीतर में प्राण को स्वीकार करते हैं, जो जगदीश चंद्र के अनुयायी हैं, पर बाहर की जो बायोलॉजी है, विदेशों की जो बायोलॉजी है, जीव शास्त्र जो है, वे यह स्वीकार नहीं करते। वे तो इतना ही कहते ठीक है चेतना है, चेतना दिखाई देती है, पत्थरों के भीतर में चेतना सुप्त है, और प्लांट लाइफ में, वेजिटेटिव वेजिटेशन में, वनस्पति में, और जिसको हमने कहा कि वह जो स्वेदज जो जीवन है उसके भीतर में कुछ हलचल दिखाई देती है, पर उसको वे जीवन की प्रक्रिया के भीतर, या जिसे हम कहेंगे विकास का क्रम, उस विकास के क्रम में नहीं गिनते। पर आज ऐसे जीव शास्त्री हैं जो उनको भी विकास के अंतर्गत लेते हैं, तो जो लेते हैं उनके लिए समझाना तो बड़ा कठिन काम है, या कठिन है कि एक प्लांट को हम कई टुकड़ों में लगा देते हैं तो कई प्लांट हो गए, तो एक जीव क्या अपने आप को बहुत रूपों में इस प्रकार से व्यक्त कर लेता है। एक कीड़ा है उसके हम 10 टुकड़े करते हैं और 10 टुकड़े जीवित रहते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ तो अगर ऐसा माने कि मानव विकास का प्रारंभ, विकास का क्रम यहां से ही शुरू होता है, स्वेदज और उद्भिज को भी हम विकास के क्रम में शामिल करेंगे, तब इसको समझाना बड़ा कठिन होता है। वैसे आजकल एक सिद्धांत तो निकला है, उस पर प्रयोग चला है। साप्ताहिक हिंदुस्तान में कुछ दिन पहले एक लेख आया था क्लोनिंग के रूप में, उसका नाम है क्लोनिंग। तो क्लोनिंग का मतलब यह है कि जैसे उन्होंने प्रयोग किया, एक चूहिया पर प्रयोग किया, पहले तो गाजर पर किया, वनस्पतियों पर किया, कि गाजर के भीतर में जो जीवाणु रहता है, जीवाणु कहते हैं जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है, कोशिका, जिसके भीतर में जीवन भरा रहता है, चैतन्य रहता है, तो उस कोशिका को लेकर के बाहर निकाल करके उन्होंने गाजर बना करके दिखा दिया, और ठीक हूबहू उसी किस्म का गाजर जिस गाजर से उन्होंने कोशिका को निकाला, तो उन्होंने ये सोचा कि वनस्पति जीवन में क्लोनिंग तो सफल है, अब यह जो प्राणी जीवन है इसमें सफल है क्या? तो चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया। जैसे एक चूहिया है, उन्होंने भूरे रंग की चूहिया ली। अब भूरे रंग की चूहिया में उन्होंने वह जो भूरे रंग की चूहिया में जो भ्रूण बना, उस भ्रूण से वे कोशिका को निकाल लेते हैं। अब यह समझाना जरा कठिन है क्योंकि साइंस की बातें हैं। उसके भीतर में नाभि होती है और नाभि के अंतर्गत डिंब होता है, तो उस कोशिका को निकाल करके वे अन्य चूहिया के भीतर से डिंब निकाल करके दोनों का मेल कराते हैं और एक तीसरी चूहिया के गर्भ में डाल देते हैं, और उससे बिल्कुल भूरे रंग की चूहिया पैदा होती है। बाकी जो तीन चूहिया लिए, भूरे रंग की चूहिया से कोशिका को निकाला, काले रंग की चूहिया से डिंब निकाला, और गर्भ में डालते हैं सफेद रंग की चूहिया में, तो उससे जो चूहिया निकलती है वह बिल्कुल भूरे रंग की चूहिया, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार की वह चूहिया थी, भूरी चूहिया जिसमें से कोशिका को निकाला, इसके इन्होंने क्लोनिंग कहा। इसका मतलब यह है कि क्या यह मान्यता हमारी सही है, प्रश्न उठता है। जैसे योगी अपने आप को कई शरीर में बिल्कुल हूबहू उसी प्रकार के शरीर में व्यक्त कर दे सकता है, तो इस मान्यता के पीछे कुछ वह सिद्धांत तो हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ, एक जैसे घोड़ा है, तो घोड़ा है तो हम बिल्कुल उस घोड़े का प्रतिरूप, जो जानवर है उस जानवर का प्रतिरूप, और इसी को थोड़ा सा और ले जाएं, एक मनुष्य है तो उस मनुष्य का बिल्कुल प्रतिरूप बना सकते हैं, ठीक हूबहू उसी प्रकार का मन वाला, उसी प्रकार का देह यष्टि वाला, ऐसा बना सकते हैं इस सिद्धांत के द्वारा। अब ऐसा यदि संभव है, तब फिर मान लीजिए कि एक जीव से तो कोशिका को निकाला और एक नया जीव बनाया, तो क्या हम नया जीव बना सकते हैं? यह प्रश्न उठता है, क्या मैं नया चैतन्य बना सकता हूं? इसका उत्तर बायोलॉजी साइंस में नहीं है। अभी तक बायोलॉजी साइंस, जीव शास्त्र यह कहता है कि मनुष्य अभी तक जीवन बनाने में, चैतन्य बनाने में सफल नहीं हुआ है। वह लिविंग सेल लेकर के, जीवित सेल लेकर के, भले उसके द्वारा क्लोनिंग की प्रक्रिया से एक हूबहू उसी प्रकार का जीव बना ले, पर जीवन बनाने में वह असफल रहा है, और हमें ऐसा नहीं लगता कि आगे चल करके कभी वह जीवन का निर्माण कर सकेगा। यह आज का जीव शास्त्री कहता है, यह जीव शास्त्र है। पर क्लोनिंग की जो बात है, तो क्लोनिंग जैसे एक चूहिया से, मान लीजिए एक चूहे से हमने 10 कोशिकाएं निकाली और 10 कोशिकाओं पर प्रयोग करके 10 वैसी चूहे बना दिए, तो अब ये 10 अलग अलग जीव हैं या एक ही जीव अपने को 10 में विभक्त करता है? आपका प्रश्न यह होगा कि ठीक है कि उद्भिज और उसी प्रकार आपने जो कहा कि स्वेदज, इन दोनों पर यह क्रिया प्रक्रिया लागू नहीं होती, तो ठीक है, एक हमने वनस्पति के टुकड़े करके लगा दिया, उनमें जीवन आ गया, आप कहते हैं वहां पर यह तथ्य लागू नहीं होता, मान लिया। अच्छा, कीड़े को ले लिया, स्वेदज को ले लिया, वहां पर टुकड़े किए, वहां पर जीवन आ गया, आप कहते हैं उसको भी आप नहीं मानते, पर यह तो जरायुज है, यह जो चूहा है वह तो गर्भ से निकला है। अब एक चूहे के अगर 10 प्रतिरूप चूहे हमने बना लिए, तो आप बताइए कि एक ही जीव 10 रूपों में है या ये 10ों में 10 अलग अलग जीव हैं? आपकी दृष्टि से क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कठिन है, और इसलिए भी कठिन है कि इसको यूं कहा जा सकता है कि अभी तक 363 प्रयोग किए गए और उसमें से केवल 3 प्रयोग सफल हुए। जो वहां पर आंकड़े हैं, 363 प्रयोग किए चूहे पर और उन 363 प्रयोगों में केवल 3 सफल हुए। अब ये जो 3 सफल हुए हैं वे किस प्रकार सफल हुए हैं? क्या वहां पर प्रयोगशाला में उसी प्रकार की बातें रही हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी के समान तो कोई बात नहीं रही? यह सब कई प्रकार के विचार आते हैं। और अगर हम एक एक्सट्रीम व्यू लेकर के यह देख लें कि बिल्कुल ठीक है, इस प्रकार जो 3 प्रयोग सफल हुए वे सच्चे सच्चे प्रयोग हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं रही है, कोई भूल नहीं रही है, तो हम यही कह सकते हैं फिर 360 प्रयोग सफल क्यों नहीं हुए? केवल 3 ही प्रयोग क्यों सफल हुए? इसका मतलब यह है कि जहां पर इस प्रकार कोशिका को निकाल करके और दूसरी चूहिया से डिंब को निकाल करके और दोनों की नाभि को एक किया जा रहा है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि वहां पर किसी जीव का संक्रमण हो गया है और वह चूहे की योनि में आ गया है। अगर हम ऐसा माने तो फिर यही कहेंगे कि यह जो जीव आ रहा है इस नए चूहे में वह भिन्न जीव है, वही जीव का प्रतिरूप नहीं बल्कि वह भिन्न जीव है। ऐसा कहने में किसी प्रकार की हिचक नहीं होगी। तो हमने यह कहा कि अगर ऐसी स्थिति है तो स्वेदज और उद्भिज इन दोनों को अगर हम निकाल दें उस प्रक्रिया में से, विकास की प्रक्रिया से, तो हमारा यह जो प्रश्न है उत्तर देने में सरल हो जाता है। तो यही कहेंगे कि जीव के प्रतिरूप नहीं बनते, जीव तो एक ही होता है और वही जीव विकास की परंपरा में से जाता है, और जब तक मनुष्य योनि तक नहीं आता तब तक उसका विकास केवल यांत्रिक होता है, मैकेनिकल होता है, ऑर्गेनिक होता है, जैविक होता है। पर जो ही वह मनुष्य योनि में प्रवेश करता है त्यों ही उसके भीतर में इच्छा स्वतंत्र आ जाता है। देन इट नो मोर रिमेन्स मैकेनिकल, इट बिकेम्स मोर मेंटल, जैसा कि जूलियन हक्सले बड़े जीव शास्त्री कहते हैं कि फिर वह मनुष्य योनि में आने के बाद विकास का क्रम यांत्रिक नहीं रह जाता, जैविक नहीं रह जाता, फिर उसके बाद वह अधिक मानसिक हो जाता है। और मानसिक का मतलब वोलीशन, जहां पर हम अपनी इच्छा से कुछ कर सकते हैं, इच्छा से बदल सकते हैं, इच्छा से नष्ट कर सकते हैं, यह जहां पर आए उसको हम कहते हैं वोलीशन। तो यह स्थिति है। तो ये जो पांच प्रवचन हुए, इन पांच प्रवचनों में हमने इस जीवन की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया। अब इसमें कितने भी प्रश्न हो सकते हैं, या तो भिन्न भिन्न दृष्टि से देखने की कोशिश की। एक जिसे हम कहते हैं कर्सरी, एक बहुत मोटा, एक मोटी रूपरेखा आपके समक्ष जीवन की प्रक्रिया की कही। जब हम आज की किताबों को पढ़ते हैं, जीव शास्त्र की किताबों को, तो देख करके लगता है कि यह शास्त्र कितना जटिल है, जीवन की प्रक्रिया को समझना कितना कठिन काम है, एक अमीबा को समझना कितना कठिन काम है। उस अमीबा के भीतर में वह सारा का सारा चैतन्य निहित है, जैसा कहा है हमारे शास्त्रों ने। तो सचमुच में आज के जीव शास्त्र को पढ़ करके उसकी संभावना मालूम पड़ती है कि भले वे वैसा न कहें, पर वे कहते हैं कि यह जो सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, यह कॉम्प्लेक्सिटी है जीवन का, यह जो जिसको कहेंगे कि जीवन में यह जो जटिलता है, यह सारी जटिलता उस सूक्ष्म अमीबा के भीतर में बंद है, इसको तो आज का जीव शास्त्र स्वीकार कर रहा है। तो जीवन एक ऐसी पहचान, इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो चर्चा की उसका चर्चा का तात्पर्य है कि केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, देव योनि भोग योनि है, और मनुष्य को छोड़कर के अन्य जितनी भी निम्न योनियां हैं वे भी सब भोग योनियां हैं, वहां पर केवल भोग ही होता है, या तो केवल प्रकृति के नियमों का पालन होता है यांत्रिक रीति से, या केवल ऑर्गेनिक हम संबंधों से, जैविक संबंधों से बढ़ते चले जाते हैं। पर मनुष्य योनि में आकर के यह जीव अपनी इच्छा शक्ति को व्यक्त करने में समर्थ होता है, अपना निर्माण वह यहीं पर करता है, चाहे वह अपने को पीछे ले जाए, चाहे वह अपने को सामने ले जाए, या मनुष्य की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। अब कोई कह सकता है, एक प्रश्न अंत में उठ सकता है कि देखो सामने ले जाओगे अपने को विकास की प्रक्रिया में तो उसमें तो बहुत कठिन, बहुत दुख होते हैं, बड़ी जटिलता होती है, और जो पीछे हैं जैसे आदिवासी हैं, आदिवासियों के संबंध में हम यह जानते हैं बड़े भोले हैं, उनके जीवन में कोई विशेष प्रकार के जटिल संस्कार नहीं है, वे बड़े ईमानदार होते हैं, सत्यवादी होते हैं, वे झूठ नहीं बोलते, और उनमें यह जो प्राकृतिक नैसर्गत जो गुण हैं वे सारे के सारे गुण हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि कितने भोले भाले हैं, अगर हम उन आदिवासियों को देखें तो छल कपट नहीं करते, जो बात मन में आई उसे बोल देते हैं, कभी छिपाते नहीं किसी बात को, और उनके भीतर में जो एक इमोशन उठता है, भावना उठती है, उसको वे दबाते नहीं, उसे वे प्रकट कर देते हैं। और इसीलिए कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि वहां पर आदिवासियों को हमारे संपर्क के कारण जो वे बिगड़ रहे हैं उसे बचा देना चाहिए। अब यह प्रश्न उठता है, यह बात तो उठी भी थी कई मीटिंग में, जिन बैठकों में मैं शामिल हुआ था सरकार की, वहां पर कुछ अफसरों का ऐसा मत कि आदिवासी क्षेत्रों में हमें कुछ नहीं करना चाहिए, वहां सड़क नहीं बनानी चाहिए, वहां पर किसी प्रकार यातायात के साधन नहीं करने चाहिए, क्योंकि शहरी लोगों के संपर्क में आकर के यह जो आदिवासी है वह भी खराब हो जाएगा, वह भी दूषित हो जाएगा। तो हम उस आदिवासी को, वह जो पुराना है उसका जो स्वभाव है वहीं पर रखना चाहते हैं। अब यह फीजिबल है क्या, यह प्रैक्टिकल है क्या? यह हमने कहा कि भाई यह कोई व्यावहारिक बात तो है नहीं कि हम आदिवासी को उसी अवस्था में रख दें जिस अवस्था में वह है, और हम उसके गुणों की यह जो दुहाई देते हैं कि वह बड़ा ईमानदार है, उसमें चोरी नहीं है, छल नहीं है, जब हमारे संसर्ग में आता है तो चोरी करना सीखता है, मिथ्या बोलना सीखता है, पाप करना सीखता है, यह तो बिल्कुल सही बात है। परंतु एक दूसरा पक्ष भी देखना पड़ेगा कि दीवाल भी तो या गाय भी तो चोरी नहीं करती, गाय भी तो किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलती, या जैसे कहें कोई पशु भी तो झूठ नहीं बोलता, पशु भी चोरी नहीं करता। तो इसका मतलब कि वह जो आदिवासी है अभी का जो जीवन है उसे हम क्या उदात्त जीवन कहेंगे? नहीं कहेंगे, वह तो इंस्टिंक्ट पर जीने वाला जीवन है। जैसे पशु अपनी सहज प्रेरणा का जीवन जीता है तो आदिवासी भी सहज प्रेरणा का जीवन जीता है, उसके विचार अभी परिष्कृत नहीं हुए हैं, और जब उसके भीतर में कुछ परिष्कृत विचार आएंगे तो उसके भीतर में द्वंद्व उपजेगा, द्वंद्व उपजने से जीवन कुछ जटिल होगा, यह हम स्वीकार करते हैं। तो इन लोगों का जो मत है, कुछ अधिकारियों का, उनके जीवन को जटिल क्यों करते हो, मनुष्य जीवन तो यूं ही अधिक जटिल है, वे तो हैं अच्छे हैं तो उनको अच्छे रहने दो। पर हम कहते हैं कि वे अच्छे रहेंगे क्या, कब तक रहेंगे? हमारा संसर्ग अभी हम न दें तो यह तो संसर्ग उन्हें कभी न कभी मिलने वाला है, विकास का क्रम कभी पीछे नहीं जाता है, वह तो आगे चलता है। एक भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक है, उसमें कहा गया है, यश्च मूढ़ तमोलोके यश्च बुद्धेः परम गतः द्वो इमौ सुखमेधेते क्लिश्यति अंतरितो जना। कहा है भागवत में कि दो प्रकार के व्यक्ति जीवन में बड़े सुखी होते हैं। कौन है दो प्रकार के? एक तो वह व्यक्ति है यश्च मूढ़ तमोलोके, जो सबसे मूढ़तम है, माने जिसकी बुद्धि बिल्कुल मूढ़ है, अपनी बुद्धि से जो काम नहीं लेता वह बड़ा सुखी है। और दूसरा यश्च बुद्धेः परम गतः, कि जो बुद्धि से पार चले गए हैं, मानो साधना के द्वारा जो बुद्धि और विचार के परे चले गए हैं वे सुखी। तो एक तो मूढ़ व्यक्ति सुखी और एक जो बुद्धि से परे चले गए हैं वो सुखी। और दो युमौ सुख मेधेते, ये दो प्रकार के व्यक्ति तो सुख का लाभ करते हैं, क्लिश्यति अंतरितो जना, और बीच में हम जितने भी हैं सब क्लेश का, दुख का अनुभव करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो हम मूढ़मति हों या फिर हम बुद्धि के परे चले जाएं। तो लोग कह सकते हैं कि बुद्धि के परे चले जाना तो बड़ा कठिन काम है, इसलिए चलो हम मूढ़ ही बन जाएं ताकि हम सुख का उपभोग करें। तो कोई मूढ़ हो सकता है? संभव ही नहीं है। विकास की प्रक्रिया नीचे नहीं जाएगी, पीछे नहीं जाएगी, वह तो सामने ही जाएगी। छोटा बच्चा कितना प्यारा होता है, उसके संस्कार तब प्रकट नहीं हुए हैं, उसमें चौर्य नहीं है, सत्यवादी है। एक छोटे बच्चे को देखिए कितना बढ़िया लगता है, इसीलिए कहते हैं शिशु देव के समान होता है, क्योंकि उसकी सारी बुराइयां ढकी रहती हैं। पर क्या बुराइयां नहीं है? क्या हम देखते हैं जैसे शिशु जो जो बड़ा होता है उसके भीतर की जटिलता प्रकट होती है। जो शिशु बड़ा ईमानदार था वह बड़े होने पर बहुत मिथ्यावादी हो जाता है, जो कभी चोरी नहीं करता था वह बड़े होकर के चौर्य कर्म करने लगता है।